मानव होने के नाते जन्मजात साधक है, कारण कि मानव के अतिरिक्त और कोई सत्संग नहीं हो सकता, और जो सत्संग नहीं हो सकता वो साधन निष्ठ नहीं हो सकता। इस दृष्टि से इस जीवन का बड़ा महत्व है, परंतु बड़े ही आश्चर्य की बात है, दुख की बात है, हम इस मानव जीवन का मूल्यांकन मानव होने के नाते नहीं करते, अपित बाह्य परिस्थिति भारी भूल है। मानव होने के नाते ही सवाल महत्व है, इतना बड़ा महत्व है कि मानव उदार होकर जगत के लिए समता प्राप्त करके अपने लिए और गुरु के लिए उपयोगी कर सकता है। इस दृष्टि से यदि मानव जीवन का मूल्यांकन किया जाए तो बड़े ही सुंदर बात हो जाती। इतना ही नहीं, वायु भेद के कारण जो हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा मान लेते हैं, ये भ्रम सदा के लिए मिल जाए और हम सभी मानव एक कारण की मिले हुए में ममता नहीं रहती, तो फिर न दीनता रहती है, न अभिमान रहता और न विषमता रहती। ममता के कारण ही तो दीनता और अभिमान उत्पन्न होता है और उसको उत्पन्न होने से विषमता जीवन में आ जाती है, और जब विषमता आ जाती है तो परस्पर में सच्ची एकता का दर्शन नहीं होता, जब एकता का दर्शन नहीं होता तो संघर्ष का जन्म होता। इस दृष्टि से सभी स्थापकों को अर्थात बुजुर्ग भाई और बहन को विचार पूर्वक निर्मम होना है, अर्थात यह अनुभव करना है कि मेरा करके कुछ नहीं। ये ज्ञान सिद्ध बात है, जो कि ज्ञान से सिद्ध होती है उसके लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती। क्यों? ज्ञान में संदेह होता ही नहीं, तो मिली हुई कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नहीं है। तो जो वस्तु व्यक्तिगत नहीं होती वो अपने लिए नहीं होती, संसार के लिए होती है। तो मिला हुआ बल संसार के लिए है, किंतु मिला हुआ जो ज्ञान है वो अपने लिए है। तो कैसे? ज्ञान के द्वारा ही तो हम लोग निर्मम निष्काम तथा असंग होते हैं, और निर्मम होने से ही निर्विकारता, निष्काम होने से शांति और असंग होने से मुक्ति प्राप्त होती। इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि मानव अपने ज्ञान का आदर करे तो उसके जीवन में निर्विकारता, शांति और मुक्ति आ सकती, तो मिल सकती है। और जब जीवन निर्विकारता, शांति और मुक्ति से परिपूर्ण होता है तभी संसार के प्रति उदारता और प्रभु के प्रति प्रेम की जागृति होती है। जब तक मानव स्वयं निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक न उसमें उदारता आती है न प्रियता आती है, और जिसमें उदारता नहीं है उसकी मांग जगत को नहीं रहती, और जिसमें प्रियता नहीं है वो प्रभु के लिए उपयोगी नहीं होता। इस दृष्टि से अगर आप विचार करके देखें तो हर भाई को, हर बहन को अपने ही ज्ञान के द्वारा अपने को निर्मम होना है। ये निर्मम होना कोई अभ्यास करना नहीं है, ये तो अपने ज्ञान के आधार पर ये अनुभव करना है कि वास्तव में मेरा करके कुछ नहीं है, न तन मेरा है, न मन मेरा है, न धन मेरा है, कोई वस्तु मेरी नहीं है। इस बात को अपने ज्ञान से अपने को जान लेना है, अथवा इस बात को मान लेना है तो जब आप इस बात को मान लेते हैं मेरा कुछ नहीं है, तो फिर कोई भी विकार शेष नहीं रहता, सब विकार मिट जाते हैं। और जब निर्विकारता आ जाती है तो जीवन में एक बड़ा ही दिव्य सौंदर्य आ जाता है। आप सोचिए, मोह रहित के प्रति सबका आकर्षण होता है, निर्लोभ के प्रति सबका आकर्षण होता है, जो निष्काम है उसके प्रति सबका आकर्षण होता है। कितना ही बलवान हो और मोह रहित न हो तो वो अभय नहीं हो सकता, और शरीर कितना ही दुर्बल हो किंतु मोह रहित हो तो उसके जीवन में कोई भय नहीं रह सकता। ऐसे ही धन का कितना ही अभाव हो लेकिन लोभ रहित है तो उसे कोई भी धनी खरीद नहीं सकता, निर्लोभ पर धनी का शासन नहीं रहता, किंतु निर्लोभता का शासन धनी पर रहता है। क्यों? निर्लोभ होना धन के
और सत्संगी होने से ही उत्पन्न हुए असाधनों का, अकर्तव्यों का, आसक्तियों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, समस्त साधनों की अभिव्यक्ति हो जाती है, साधन और जीवन में एकता आ जाती है। यह सत्संग की महिमा है। अब जिस सत्संग की महिमा है वह मानव का अपना स्वधर्म है। सुधर्म का अर्थ होता है कि जिसको अपने द्वारा किया जा सके। अपने द्वारा करने का अर्थ है कि जिसके लिए हमें किसी प्रकार के परिश्रम और पराश्रम की आवश्यकता न हो। जैसे प्रभु में विश्वास, कि कोई शारीरिक बल उसको लगता नहीं, आप जब चाहें तब प्रभु विश्वास कर सकते हैं, गुरु की वाणी में विश्वास कर सकते हैं, जब चाहें तब ज्ञान पूर्वक ममता और कामना छोड़ सकते हैं। इसमें कोई पराधीन नहीं है, कोई असमर्थ नहीं है। तो जो लोग अपने ज्ञान के प्रभाव से अपने को ममता कामना तादात्म इनसे अलग कर लेते हैं, वे बड़ी सुगमता पूर्वक आसानी से निर्विकारता, शांति और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम को ये विचार करना है कि जब हम स्वाधीनता पूर्वक निर्विकारता, शांति और मुक्ति को पा सकते हैं तो फिर हम मुक्त होते क्यों नहीं, शांत होते क्यों नहीं? तो इससे ये साफ लगता है कि विकारों से उत्पन्न हुआ जो सुख है, यद्यपि एक प्रकार का भ्रम ही है, वास्तविक सुख तो है नहीं, तो उस विकारों से उत्पन्न हुए सुख को चाहे तो यूं कहो हम पसंद कर लेते हैं, चाहे यूं कहो उसको हम नापसंद नहीं करते।
अगर हम विकारों को नापसंद
करते, अगर हमें सोचते हमको तो लोभ मोह काम क्रोध नहीं चाहिए, हमको पसंद नहीं है, तो कोई भी विकार हमारी आपकी पसंदगी के बिना हमारे आपके जीवन नहीं रह सकता। क्या ये धन में ताकत है कि हम लोग भी बना दें, कि हम स्वयं धन को पसंद करके अपने को लोग भी बनाते हैं? क्या ये तन में ताकत है कि हमको मोही बना दे, कि हम स्वयं ही तन को पसंद करके अपने को मोही बनाते हैं? तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जीवन में जितने विकार पैदा होते हैं, बुराई पैदा होती हैं, वे सब तभी तक होती हैं जब तक हम उनको सहन करते हैं। सहन करना कहो, पसंद करना कहो, या भाई ये मान बैठे हैं मानो हम बुराई रहित हो ही नहीं सकते, पर ऐसी बात तो नहीं है। क्योंकि अगर हम बुराई रहित नहीं हो सकते होते तो हमारे सामने बुराई रहित होने का प्रश्न ही नहीं आता। जो बात हमको नहीं प्राप्त हो सकती उसकी प्राप्ति का प्रश्न थोड़ी आता है जीवन में। हम सब बुराई रहित हो सकते हैं, जब चाहे तब हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? कि बुराई जितनी है वो हमारी भूल से उत्पन्न हुई है, तो जो कि हमारी भूल से उत्पन्न होती है वो भूल रहित होने से मिट सकती है। जो चीज प्राकृत है उसे आप नहीं मिटा सकते। संसार के संबंध को आप तो हो सकते हैं, संसार को आप नहीं मिटा सकते। नहीं तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हो गए, संसार को अजसा है ही है, पहले भी था, अब भी चल रहा है, आगे भी रहते हैं, किंतु उस संसार का जो संबंध है, उस संसार के और हमारे बीच की जो रिलेशनशिप है, बोले उस संबंध को हम तोड़ सकते हैं। तो हमें संसार को नहीं तोड़ना है, हमें संबंध को तोड़ना है, और अपने द्वारा तोड़ना है और अपने लिए तोड़ना है। तोड़ने का मतलब क्या? कि जो कुछ मिला हुआ मालूम होता है वो मेरा नहीं है, उसका संबंध टूट गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसका संबंध टूट गया। तो कुछ न चाहने से और अपना न मानने से संसार से संबंध टूट जाता है। अब ये बात कि हम अपना न माने, हम कुछ न चाहें, कोई दूसरा हमारे साथ कैसे कर देगा? क्या राय आप कर सकता है क्या? मान लो कोई दूसरा चाहे, हम आपसे कहेंगे साहब आप अपने शरीर को अपना मत मानिए, अपनी संपत्ति को अपना मत मानिए, तो ये कोई दूसरे के हाथ की बात तो नहीं है ना। लेकिन आप अगर स्वयं चाहें कि हम किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानेंगे, बोले क्यों? इसलिए कि उस पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। हम जब तक चाहें, जैसा चाहें, जितना चाहें नहीं रख सकते। तो जिसके में हम स्वतंत्र नहीं है वो हमको नहीं चाहिए, इसमें हम ही न समर्थ हैं, हम ही न स्वाधीन हैं। यद्यपि ये स्वाधीनता हमको गुरु ने दी है और गुरु ने इस बात का समर्थन किया है, ये कहा है कि ममता छोड़ दो, कामना तोड़ दो, हाँ? शांत हो जाओ, अपने में अपने प्रभु को पाकर कृतकृत हो जाओ। सभी संतों ने ये कहा है कि परमात्मा सदैव है और सदैव होने से अभी भी है और सर्वत्र है और सर्वत्र होने से अपने में भी है और सभी का है तो सभी का होने से अपना भी है। तो जो परमात्मा अभी है, अपने में है, अपना है, आज वो हमें प्यारा नहीं लगता। किसकी भूल है? ये अपनी तो भूल है। और जिस शरीर पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, इतना ही नहीं, जिस शरीर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तेरा हूं, उसको आज हम अपना मानते हैं। तो जो अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं और जो अपना है उसे अपना नहीं मानते हैं। तो दोनों प्रकार से बहुत बड़ी हानि क्या हो गई कि जो अपना नहीं है उसको जब हम अपना मानेंगे तो अनेक प्रकार के विकार पैदा हो जाएंगे, दोष उत्पन्न हो जाएंगे। और जो अपना है उसे अपना नहीं मानेंगे तो अब प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। अगर जीवन में प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर क्या मिला वो सोचिए। और अगर हमने अब विकारों को उत्पन्न कर लिया तो ये कोई हमारा विकास तो नहीं हुआ, ये तो हमने अपने ही द्वारा अपना विनाश कर दिया। इसलिए ये बात बार 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 कही जाती है कि भाई इस बात खूब गंभीरता से विचार करो कि वास्तव में हमारा कौन है, किसको हम अपना माने। क्या इस मिले हुए शरीर को अपना माने? ये जब तक चाहे रहेगा तो सबको मानना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो कोई भी ऐसी वस्तु इंद्रियों के द्वारा देखने में नहीं आई है कि जिसको हम अपना मान लेते और जिसका हमारा नित्य संबंध बना रहता, नित्य योग बना रहता। और ऐसी कोई वस्तु देखने में आई नहीं, पर हमारी नहीं आई हो, आपके आई हो तो आपके भी नहीं आई, या किसी और के आई हो तो किसी और के भी नहीं आई। किसी ने नहीं कहा कि अमुक वस्तु ऐसी है कि जिसका और मेरा संबंध कभी टूट ही नहीं सकता, ऐसा तो दिखने वाली वस्तु मत कोई ऐसी है ही नहीं, क्या दशा होगी? जो दिखाई देता है उस पर अपना अधिकार नहीं है। अगर ये बात आप अपने ज्ञान से मान लेते तो आज तन में, धन में, मन में ममता नहीं होती, और ममता नहीं होती तो तन चला जाता सो बात नहीं, धन चला जाता सो बात नहीं, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते सो बात भी नहीं, तन का धन का योग्यता का आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, किंतु उसका अभिमान नहीं कर सकते, उसको अपना नहीं मान सकते और उसका नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दो ही बातें तो करने की हैं, अपना न माने और नाजायज इस्तेमाल न करें। तो अगर ये दो बातें आप मान लेते हैं तो सदा के लिए आपका नाम उन इने गिने लोगों में हो जाता है कि जो दुनिया के काम आए और जो आजाद हुए, उनमें आपका नाम हो जाता है। क्यों? मिले हुए का जायज इस्तेमाल करना ही तो दुनिया के काम आना है, और अपना न मानना ही तो मुक्त होना है, तो आपको मुक्ति भी मिल जाती और आप दुनिया के काम भी आ जाते। उसके बाद भी यदि आपको कुछ करना है तो यही करना है कि जिस प्रभु को हमने गुरु की वाणी के द्वारा, वेद की वाणी के द्वारा, संतों और भक्तों की वाणी के द्वारा सुना है, ये परमात्मा है। ये कोई हिंदुस्तानियों की बात नहीं है, ईसा ने भी कहा, मोहम्मद ने भी कहा कि परमात्मा है। तो ये जो हमारी मीरा जी ने कहा, गुरु नानक देव ने कहा, अनेक गुरुओं ने कहा, अनेक संतों ने कहा, अनेक भक्तों ने कहा, अनेक ग्रंथों में ये बात लिखी है कि परमात्मा है, इसके लिए अनेकों प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन उस सुने हुए परमात्मा को हमने अपने द्वारा स्वीकार नहीं किया। जैसे आप अपने नाम को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी जात को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो फिर कभी जीवन भर भूलते ही नहीं। आप लोगों में से किसी का ये अनुभव नहीं है कि आप अपना नाम भूल जाते हो, या आपको अपने नाम की माला फेरनी पड़ती हो, या आपको अपने नाम का ध्यान करना पड़ता हो? ऐसा तो आपने कभी नहीं अनुभव किया होगा, सुना और मान लिया। तो जैसे आप अपना अपने नाम को सुनकर के मान लेते हैं और वो सदा के लिए आपके साथ आपको स्मरण रहता है, कभी उसकी विस्मृति नहीं होती, उसी प्रकार यदि हमने आपने गुरुवाणी के द्वारा सुने हुए भगवान को मान लिया होता कि भगवान है, ये बड़ी भारी बात है। भगवान है ये मानना ही बहुत बड़ी बात है। क्यों? फिर कोई और है इस बात की हमको जरूरत रहती क्या? अगर हम ये मान लेते कि भगवान है तो फिर कोई और है इस बात के मानने की जरूरत नहीं रहती। और उसके बाद यदि हम उसको अपना मान लेते तब तो फिर क्या बात थी, जीवन प्रेम से भरी जाता। और कहीं उसकी महिमा स्वीकार कर लेते तो हम अभय हो ही जाते। आज अगर हमारे जीवन में भय है तो क्यों है? हम भगवान की महिमा को स्वीकार नहीं करते। आज हमारे जीवन में अगर निरस्ता है तो क्यों है? हम भगवान को अपना नहीं मानते। पहले तो भगवान को ही नहीं मानते, और दूसरी भूल क्या करते हैं कि उनकी महिमा स्वीकार नहीं करते, और तीसरी भूल क्या करते हैं कि उनको अपना नहीं मानते। उसका ये परिणाम है कि आज जीवन में अनेक प्रकार के भय उत्पन्न हो गए हैं, अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो गए हैं, और हम प्रभु प्रेम से विमुख हो गए हैं। जो जीवन प्रभु प्रेम से भरा रहना चाहिए था उस जीवन में राग द्वेष की अग्नि जल रही है। और क्या है देखिए, आप या तो आप अपने में राग पाते हैं या द्वेष पाते हैं या क्रोध पाते हैं या काम पाते हैं या लोभ पाते हैं मोह पाते हैं। तो जो जीवन निर्विकारता से परिपूर्ण होने के लिए मिला था, प्रेम से परिपूर्ण होने के लिए मिला था, स्वाधीनता और शांति से परिपूर्ण होने के लिए मिला था, निर्विकारता से परिपूर्ण होने के लिए मिला था, उस जीवन को हमने अपनी ही भूल से विकारों में बांध दिया है। तो ये जो हमने विकारों में बांध दिया है उसके मूल में हमारी भूल है। उस भूल को यदि हम जान लें और छोड़ दें, पहले जान लें फिर छोड़ दें कि भाई हमारी बड़ी भारी भूल है कि हम भगवान की दी हुई वस्तु को तो अपना मानते हैं और भगवान को अपना नहीं मानते, ये हमारी बड़ी भारी भूल है। भगवान की दी हुई वस्तु जो भगवान ने हमको दी है उसके इस्तेमाल करने में तो कोई रुकावट है नहीं। किसी भी वस्तु का सही इस्तेमाल किया जाए तो न संसार नाराज होता है न हमको पराधीनता मालूम होती है। तो वस्तु के इस्तेमाल करने की बात पर ही हमने संतोष न करके उसको अपना मान लिया, और उस अपना मानने से हमारा कोई वस्तु पर अधिकार हो गया, उसको तो नहीं गया, वो हमसे अलग नहीं होगी, उसको तो ऐसा तो नहीं हुआ, वो तो अलग होगी ही। तो वस्तु भी अलग हो जाएगी, हमारे पल्ले केवल वस्तु की ममता से उत्पन्न होने वाला लोभ मोह आदि यही पल्ले रह जाएगा, और वस्तु भी चली जाएगी और हम अनेक दोषों में बंध जाएंगे, फंस जाएंगे। तो यही आज की दशा है। अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का विकार न रहे तो फिर भाई भूल रहे हो जाओ, भूल को छोड़ दो, विकार मिट जाएगा। तुम विकार भूमि से पैदा नहीं हुआ, भूमि से, आकाश से, वायु से, जल से, अग्नि से, ये जो पंचभूत संसार है इससे विकार नहीं पैदा हुआ। हमें हमारे जीवन में जो विकार पैदा हुआ वो हमारी भूल से पैदा हुआ। हाँ, सृष्टि से वस्तुएं पैदा हुई, व्यक्ति पैदा हुए, परिस्थिति पैदा हुई, सब हुआ, लेकिन सृष्टि से विकार पैदा नहीं हुआ। अगर विकार सृष्टि का बनाया हुआ होता तो उसके मिटाने की जिम्मेदारी हम पर अपर न होती। क्योंकि विकार को हमने अपनी भूल से जन्म दिया है इसलिए हम पर जिम्मेदारी है कि हम अभी अभी निर्लोभ हो जाए, निर्मोह हो जाए, निष्काम हो जाए, जिम्मेदारी हम पर। आप निर्लोभ कैसे हो जाए कि भाई मिली हुई वस्तु को अपना मत मानो, अप्राप्त की कामना मत करो। अगर हम प्राप्त वस्तु को अपना नहीं मानते हैं और अप्राप्त वस्तु की कामना नहीं करते हैं, एक दो बात, और संग्रह की रुचि नहीं रखते हैं, तीन बात, और उसका नाजायज इस्तेमाल नहीं करते हैं, चार बात, और सही इस्तेमाल करने का अभिमान और फल नहीं रखते हैं, पांच बात, अगर ये पांच बातें हमारे आप मान लें अभी अभी हम सब निर्लोभ हो सकते हैं, निर्मोह हो सकते हैं, निष्काम हो सकते हैं। अब आज इस विज्ञान को लोग भूल गए हैं कि निर्लोभ होने से दृढ़ता का नाश होता है, निर्मोह होने से भय का नाश होता है, निष्काम होने से अशांति का नाश होता है, इस बात को भूल गए। लोग समझते हैं कि पैसे के जोड़ने से हमारी दृढ़ता मिट जाएगी, शरीर को मजबूत बनाने से भय मिट जाएगा, कामना पूर्ति से अशांति मिट जाएगी, सो नहीं मिटेगी। दरिद्रता मिटेगी तो निर्लोभता से मिटेगी, भय नाश होगा तो निर्मोहता से नाश होगा, अशांति मिटेगी तो निष्कामता से मिटेगी, और किसी प्रकार मिट ही नहीं सकती। और ये तीनों बातें निर्लोभता, निर्मोहता, निष्कामता हम सब जब चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। क्यों भाई? इसलिए प्राप्त कर सकते हैं ना कि ये हमारी भूल से तो पैदा हुआ है। जो चीज हमारी भूल से उत्पन्न हुई है वो हमारी हम भूल रहे तो हो जाए तो नाश हो जाएगी। तो आज हम इस बात पर नहीं ध्यान देते हैं, नहीं गौर नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं कि भाई जितना धन हमको चाहिए था उतना तो मिला नहीं, और मिला भी उस पर अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं, इस पर नहीं सोचते हैं कि भाई क्यों ना हम निर्लोभ हो जाए। तो निर्लोभ होने की बात नहीं सोचते हैं, संपत्ति प्राप्त करने की बात सोचते हैं, मोह रहित होने की बात नहीं सोचते हैं, शरीर को बनाए रखने की बात सोचते हैं, निष्काम होने की बात नहीं सोचते हैं, कामना पूर्ति की बात सोचते हैं। तो ये जो हम उल्टा सोचने लग गए उसका जो नतीजा निकला है वो हमसे आपसे छिपा तो है नहीं, आप भी इससे जानकार हैं, हम सब भी जानकार हैं। इसलिए सत्संग के प्रकाश में हमें इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए, बहुत सोचना और समझना चाहिए कि भाई जितनी संपत्ति चाहे उतनी संपत्ति तुमको नहीं मिल सकती, और मिलकर भी छिन जाती है, हमेशा हम उसके साथ नहीं रह सकते, या तो संपत्ति हमसे अलग हो जाती है या हम ही उससे अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर हम निर्लोभता चाहें तो सदा के लिए प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि निर्लोभ हम न होंगे, जहां हम होंगे वह निर्लोभता होगी। क्या राय जी, नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, और हम नहीं हो सकते सो बात नहीं, कोई नहीं हो सकता। ये देवों के पास बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार हैं, बड़ी बड़ी संपत्ति है, बहुत सा सामान है, क्या आज वो मनमानी कर पाते हैं? क्या अमेरिका जैसा देश मनमानी कर पाता है? क्या रूस जैसा देश मनमानी कर पाता है? आप बताओ कौन सा देश ऐसा है जो मनमानी कर पाता हो? ये नहीं कर पाता ना? क्या रहा है जी, नहीं कर पाता। तो मतलब क्या हुआ कि बाहरी बल कितना ही हो जाए उसके आश्रय लेकर उसके आधार से आप अभय नहीं हो सकते। कितना ही बल आपके पास हो जाए, अभय कब हो सकते हैं? निर्मम होकर, मेरा कुछ नहीं है इस बात का ठीक ठीक अनुभव करने से आप अभय हो सकते हैं, और दरिद्रता मिट सकती है, अशांति मिट सकती है। भय, दरिद्रता और अशांति, इन तीनों का नाश हो सकता है। भय का विनाश हो सकता है, दरिद्रता का विनाश हो सकता है, अशांति का विनाश हो सकता है। कब? जब आप ज्ञान पूर्वक जो बात सिद्ध है, जो बात ज्ञान से प्रमाणित है, सिद्ध है, जो बात गुरु ग्रंथ से सिद्ध है, उसको यदि मान ले तो हम सबका बेड़ा पार हो सकता है, हम सबको वो जीवन मिल सकता है जो गुरु नानक देव जी को मिला, अथवा किसी भी संत को जो जीवन मिला, अथवा किसी भी भक्त को जो जीवन मिला। आप देखेंगे वो सब लोग ग्रस्त भी थे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सबसे ऊंचा जीवन उन्हीं लोगों को मिला कि जिन्होंने परिवार को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, उन्हीं को मिला। सो तो नहीं मिला, उनको भी मिला जिन्होंने बच्चे पैदा किए, उनको भी मिला जिन्होंने राज्य किया, उनको भी मिला जिन्होंने सामाजिक काम में लगे रहे। कब मिला? जब वे सत्संगी हो गए। क्या समझ? सत्संगी हो गए। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि सत्संगी होने की कोशिश कीजिए, केवल सत्चर्चा करके सत्चिंतन करके ही संतोष मत कर लीजिए। जिस बात को आप रोज कहते हैं, सुनते हैं, उसको मान लीजिए, उसको अपना लीजिए, तो मैं समझता हूँ शायद एक ही वाणी ऐसी हो सकती है कि जिसको अपना लेने के बाद आप सत्संगी हो जाए, और सत्संगी होकर साधन निष्ठ हो जाए, और साधन निष्ठ होकर अपने लिए, जगत के लिए, परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाए। तो मेरा केवल यही निवेदन था कि हम सबको सत्संगी होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, केवल सत्चर्चा सत्चिंतन करके ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। आप और हम सभी सत्संगी हो सकते हैं, क्यों? इसी उद्देश्य के लिए मानव जीवन मिला है। ये सत्संग मानव जीवन को छोड़कर और किसी में नहीं होता। कबीर की बात हमको याद आ गई, राम बुलावा भेजिया कबीरा दीना रोए, और जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। बोले मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे साधु संग चाहिए। क्यों? सत्संग के द्वारा हमें मुक्ति, शांति, भक्ति, निर्भयता, समता मृता आदि दिव्य जीवन मिल सकता है। इसी सद्भावना के साथ सभी सत्संगी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।